पिछला लेसन हमने देखा था, बहुत ही खूबसूरत लेसन, जिसमें हमने देखा कि अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा से जिक्र शुरू किया कि कैसे उन्होंने मन्नत मानी थी, और फिर मन्नत तो सोचा था कि बेटा होगा तो उसको हैकल की खिदमत के लिए पेश कर दूंगी, मगर वो बेटी हुई तो अब हैरान है, परेशान है कि अब क्या होगा। दुआएं की हुई थी कि अल्लाह ताला तुम मुझसे कबूल कर लेना, नजर मान के भी दुआ की हुई थी, जो मैंने नजर मानी है तुम मुझसे कबूल कर लेना। और अब बेटी हुई है तो उसका नाम पहले मरियम रखा, और मैंने आपको इस नाम का मतलब भी बताया था कि कितना खूबसूरत है, और कैसे पैदा होते ही बेटी को भी और उसकी आगे नस्लों तक को अल्लाह की पनाह में दे दिया शैतान से। और अल्लाह ताला ने फिर ऐसी नजर को कबूल फरमाया, ऐसी बच्ची को कबूल फरमाया, अल्लाह ने खुद उसको नशो नुमा दी, जकरिया अलैहिस्सलाम जो खुद पैगंबर थे उनकी किफालत में दे दिया। और फिर जकरिया अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि इनको ऐसे गैर मामूली रिस्क मिल रहा है, तो उन्होंने भी अल्लाह से दुआ मांग ली कि अल्लाह मुझे भी औलाद दे दे। और लेकिन औलाद कैसी? तय्यब, पाकीजा। और अल्लाह ताला ने फिर वो औलाद दी जिसका नाम भी अल्लाह ने रखा, और उसके साथ इतनी सारी खुशखबरियां दी कि वो सरदार भी होंगे, वो पाकबाज भी होंगे, वो नबी भी होंगे, वो साले लोगों में से होंगे। तो अब हम आज देखते हैं। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा था ना कि हजरत मरियम को अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी फरिश्तों के जरिए कि आपको अल्लाह ताला ने चुन लिया। कोई चुना जाता है किसी खास काम के लिए ही ना, आपको पाक कर दिया है, आपको अल्लाह ताला ने तमाम जहान की औरतों पे चुना। और फिर उनसे क्या मुतालबा किया गया कि अब चुने जाने के बाद ये नहीं होता कि इंसान अब बस उसकी खुशियां ही मनाता रहे कि मैं तो चुनी गई हूं, बल्कि चुने जाने के बाद इंसान से इस चीज का मुतालबा होता है कि वो और ज्यादा अल्लाह के आगे झुक जाए, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी में। आज हम हजरत मरियम की आगे कहानी देखते हैं कि उनके साथ फिर क्या हुआ। अल्लाह ताला ने जो उनको चुना था ना, तो किसी जाहिर है बड़े काम के लिए ही चुना था। और वो बड़ा काम क्या था कि अब इज कौलतिल मलाइका, तो जब कहा फरिश्तों ने, या मरियम, ए मरियम, यानी फरिश्ते हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए हैं। और ये मैंने आपको जैसे बताया था, फरिश्ते का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे कोई फरिश्ते आ गए, बल्कि ये इशारा है जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ कि वो हजरत मरियम के पास आए हैं और उनको उन्होंने आके खुशखबरी दी है। और ये खुशखबरी किस चीज की थी? ये खुशखबरी थी, या मरियम इन अल्लाह युबशीर की, ए मरियम अल्लाह आपको खुशखबरी देता है। और खुशखबरी क्या है? बिकलिमत मिन्हु, एक कलिमे की अपनी तरफ से। कलिमा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमा कहते हैं। क्यों? इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कलिमाए कुन से पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला ने कुन फरमाया तो पैदा हो गए, अदरवाइज आप देखें कि जाहिरी असबाब में से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यानी बाप की तरफ से जो हिस्सा था वो तो है ही नहीं। तो एक कमारी लड़की को खुशखबरी सुनाई जा रही है एक कलमे की, ये बशारत अल्लाह ताला दे रहा है। और ये बशारत है, आप देखें कि आपने पहले भी जकरिया अलैहिस्सलाम के जिक्र में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने उनको बशारत दी यहया की, अब भी आप पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ने बशारत दी एक कलमे की। इससे हमें क्या मालूम होता है कि औलाद जो है ना वो खुशखबरी है, औलाद का आना खुशी की बात है। इसके ऊपर बाज लोग बहुत, आज के वक्त में खास तौर पे, बहुत नाक मुंह चढ़ाते हैं। अगर लड़की की शादी हो जाए और वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए तो तब भी बहुत बातें बनाई जाती हैं, क्या जरूरत थी अभी, इतनी जल्दी क्या थी पड़ी हुई, और इस तरह की बातें। अभी तो एंजॉय करने के दिन थे। और अगर
दो तीन बच्चों के बाद फिर प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर इसके ऊपर भी बहुत ही अफसुर्दगी दिखाई जाती है कि क्यों हो गया अब, और दोबारा हमें तो नहीं चाहिए, जबकि अल्लाह ताला ने औलाद को खुशखबरी फरमाया। चाहे देखें हजरत मरियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो क्या सोचेंगी कि ये खुशखबरी है मेरे लिए, ये तो मेरे ऊपर, आप सोचें कि अल्लाह ताला माफ करे कि जो लोग जिना करते हैं, जो औरतें जिना में मुलव्विस होती हैं, वो भी कहती हैं कि ये काम तो कर लिया लेकिन प्रेग्नेंट ना हो हम। और कहां एक पाक दामन लड़की, एक वो लड़की जो इतनी इबादत गुजार है और नेक है, उसका प्रेग्नेंट होना, आप सोचें कि वो कितनी बड़ी एक बात बन जानी थी मुआशरे में ये लड़की, क्योंकि आज तक इंसानियत में ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि बगैर किसी ताल्लुक के कोई आमिला हो जाए तो इसका मतलब है कि कहीं इसने कोई बुरा काम किया होगा, यही सोचेंगे ना लोग, क्योंकि इसकी पहले से कोई रिवायत है ही नहीं। इसके बावजूद अल्लाह ताला इस चीज को खुशखबरी फरमा रहे हैं कि ये खुशखबरी है। और कहां ये कि आज सब कुछ ठीक ठाक होते हुए हमें खुशखबरी नहीं लगती ये चीज, और बाज औरतें अबॉर्ट तक करा देती हैं कि हाय अब हमें तो नहीं चाहिए, या अब लोग क्या बातें करेंगे। आप सोचें हजरत मरियम के वहां पे कितनी बातों की गुंजाइश थी, फिर भी अल्लाह ताला ने बशारत के तौर पे इसको मेंशन किया। तो कभी भी औलाद को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई एक मुश्किल आ गई, ये एक मुसीबत हमारे ऊपर आ गई, हाय क्यों हो रही औलाद। उनसे जाके पूछें जो औलाद को तरसती हैं, और इस नेमत की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए कभी। तो अल्लाह ताला ने इसको बशारत फरमाया, और ये हर एक के लिए एक बशारत ही है कि अल्लाह ताला उसको एक बहुत बड़ी नेमत से नवाज रहा है। तो अल्लाह ताला खुशखबरी देता है आपको ये कलमे की अपनी तरफ से, और इसका नाम है, अल्लाह ताला ने इनका भी नाम खुद रखा है, नाम क्या लकब भी खुद रखा है, इस्मुहुल मसीह, मसीह इनका लकब है, नाम नहीं है, नाम तो आगे आ रहा है, जैसे लकब होता है ना किसी का, टाइटल, टाइटल होना किसी का, मसलन है कि किसी को टाइटल दिया जाता है शेख का, किसी को आलिम का, किसी को कोई और इस तरह के टाइटल मिलते हैं इमाम का, तो उनका टाइटल क्या था, मसीह। मसीह किससे है, मसहा से, मसहा मसहा मसह हम करते हैं ना वजू में भी मसह करते हैं, तो क्या होता है मसह करते वक्त हम क्या करते हैं, हम सर पे हाथ फेरते हैं, और हम पैरों के ऊपर अगर जुराबें पहनी हुई है तो उनके ऊपर हाथ फेरते हैं, ठीक है। तो मसह का मतलब होता है फेरना। ईसा अलैह सलाम क्या करेंगे, वो फेरेंगे अपने हाथ को, जिससे वो मुजजाना तौर पे आगे आएगा, अंधे को ठीक करेंगे अल्लाह के इजन से, कोढ़ी को ठीक कर देंगे अल्लाह के इजन से, ठीक है। तो एक तो मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब है इसका बहुत ज्यादा सियाहत करने वाला, मसीह का मतलब बहुत सियाहत करने वाला, बहुत ज्यादा सफर करने वाला, तो ये बहुत घूमेंगे बहुत सफर करेंगे और दीन का पैगाम अल्लाह का पहुंचाएंगे। और मसा का मतलब होता है मुबारक भी, तो ये इनको अल्लाह ताला ने लकब अता फरमाया। किसी और का भी नाम आपने मसीह सुना है, कहीं और जहन में आता है मसीह, कहीं और किसी का नाम? हाँ जी, मसीह दिज्जाल, मसीह दज्जाल कौन है, मसीह दज्जाल का नाम भी मसीह क्यों है, वो भी बड़े हाथों की सफाई से बड़े बड़े काम करेगा, और वो भी बड़ी सियाहत करेगा, वो भी बड़ा सफर करेगा, सफर करके अपने फितने फैलाएगा। थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि वो इतना बड़ा फितना है, इतना बड़ा फितना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے پیغمبر آئے، قیامت تک جتنے لوگ آئے، فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. سب نے اپنے لوگوں کو، اپنی قوموں کو، سب پیغمبروں نے اس فتنے سے آگاہ کیا لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو مسلم نے روایت کیا، آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا. کیا مطلب فتنے کا؟ یعنی بہت بڑا ٹیسٹ لوگوں کے لیے، اتنا مشکل ٹیسٹ ہے یہ، اتنا مشکل ٹیسٹ ہے کہ کوئی کوئی ہی اس سے بچ سکے گا، کوئی کوئی. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں رو رہی تھی. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے دجال یاد آ گیا، اس وجہ سے رو رہی. یعنی انسان فکر مند ہوتا ہے نا، سوچیں ہم، ہمیں تو میں سوچ رہی تھی ہمیں تو کبھی نہیں دجال یاد آ گیا، تو ہم رونے لگے کہ ہائے ہمارا کیا بنے گا، یا ہماری نسلوں کا کیا بنے گا، کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دجال میری موجودگی میں آ گیا تو سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا، یعنی اس کی نشانی بتائی، تمہارا رب کانا نہیں ہے، یعنی وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی. تو یہ بھی مطلب ہے مسیح سے کہ یعنی وہ پھیرنے والا، یعنی اس کی ایک آنکھ پہ جیسے کسی نے ہاتھ پھیر دیا ہو نا، ایک آنکھ ہے ہی نہیں، دوسری ہے بس. لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو آج آپ کو جگہوں پہ تصویریں لگائی ہوتی ہیں کہ ماتھے پہ ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، ایسے نہیں ہوگا کہ بالکل کوئی الگ ہی کوئی مخلوق کے ماتھے پہ ایک آنکھ بنی ہو، ایسے نہیں. ایک آنکھ ہوگی اور ایک آنکھ نہیں ہوگی، یعنی اس کے اوپر جیسے کسی نے کچھ پھیر دیا، مٹا دی گئی. تو یہ ایسا فتنہ ہے کہ جب یہ آ جائے گا نا، اس کے بعد اگر کوئی ایمان بھی لائے گا تو اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا. اور جو پہلے سے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تو اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے سامنے نہ آنا، کوئی یہ سمجھ کے اس کے سامنے نہ آئے کہ نہیں جی میرا تو ایمان بڑا مضبوط ہے، نہیں مجھے نہیں کچھ ہوگا. نہیں، جو اس کے سامنے آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، لیکن نا وہ اس کا ایمان چلا جائے گا، وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا. تو اس کی وجہ سے جو مومن ہوں گے وہ تو پہاڑوں میں جا کے چھپ جائیں گے. اسی لیے ہمیں کہا گیا نا سورہ کہف پڑھنے کا جمعے کے دن، کوئی ظاہر ہے کوئی وجہ ہی ہے کہ ہمیں کہا گیا، اے کیوں ہمیں ریمائنڈ کرایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس وقت میں ہوئے تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی پہاڑوں میں جا کے چھپنا پڑے. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ دجال تب نکلے گا جس وقت لوگ اس کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں گے. اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم ابھی تو دجال نہیں ہے نا، ابھی تو کچھ نہیں ہے تو ہم کیوں اس کی بارے میں بات کریں. نہیں، اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، اس کے بارے میں اپنے بچوں کو بتانا ضروری ہے، اگلی نسلوں کو بتانا ضروری ہے، اور ان کو یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ آگے اپنی نسلوں کو بتائیں. تو یہ تب نکلے گا جب یہ، اور یہ ایسا نہیں کسی کے گھر میں پیدا ہوگا. ہم یہ سوچتے ہیں ہاں فلاں لوگ اتنے یعنی دین کو سمجھ نہیں ہے نا، تصویریں بھیج دیتے ہیں، دیکھو فلانے کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا، اس کی ایک آنکھ ہے. اب پتہ نہیں کس کس طرح کی فوٹو شاپ کر کے اور کیا کیا بنا کے رکھ دیتے ہیں. اس نے پیدا نہیں ہونا، وہ آلریڈی موجود ہے کہیں، اس نے خروج کرنا ہے بس، وہ نکلے گا بس، اور اس کے نکلنے کا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اس کو غضبناک کر دے گا. بس اللہ تعالیٰ نے جس وقت نکالنا ہوگا اس وقت کوئی ایسا واقعہ ہوگا دنیا کے اندر، مسلم میں یہ روایت ہے کہ وہ بہت غصے میں نکلے گا، کوئی چیز اس کو غضبناک بنائے گی تو وہ نکلے گا. تو آپ کو شاید اگر تمیم الداری کی وہ روایت یاد ہو کہ جو انہوں نے ایک آئیلینڈ کے اوپر دیکھا تھا اس کو، دجال کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا تھا، وہ جکڑا ہوا تھا وہاں پہ، اس نے کہا تھا میں دجال ہوں. تو وہ آلریڈی ہے اور وہ کہیں ہے. اب آپ یہ سوچیں گے ہاں تو پھر کسی کو پتا کیوں نہیں آج تک چلا کہ کہاں پہ ہے؟ तो बहुत सारी चीजें इस दुनिया में हैं जो कि इंसानों को नहीं पता है, और इसकी मिसालें आपको बहुत अच्छी तरह आपके सामने पता चलती हैं। इंसान तो छोटी चीज है, जहाज के जहाज गिर जाते हैं और पता ही नहीं है कि कहाँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा, मैं तवाफ कर रहा हूं, अचानक मैंने एक आदमी को देखा, गंदम गू सुफेद सॉरी सीधे बालों वाला, उसके बालों से पानी टपक रहा था जैसे अभी अभी गुसल किया हो। मैंने पूछा ये कौन है, मुझे बताया गया कि ये ईसा बिन मरियम है। फिर मैंने दूसरी तरफ देखा तो एक सुर्ख रंग का मोटा आदमी नजर आया, जिसके सर के बाल घुंघरियाले थे और आंख कानी थी, जिस तरह फूला हुआ अंगूर हो। मैंने पूछा ये कौन है, उन्होंने जवाब दिया ये दज्जाल है। अच्छा, ये बात नहीं है कि इंसान को पता नहीं चलेगा कि ये दज्जाल है, तो पता चल जाएगा, हर मोमिन पहचान लेगा। लेकिन इंसान वो जिसको कहते हैं ना, हम मजबूर हो गए, हम क्या करते, हम क्या करते, हम मजबूरी थी हमारी, ये इंसान मजबूरियों को लेकर और उसके पीछे चल पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी बात हो गई दज्जाल की भी, इसमें तो अल मसीह ईसा अलैहि सलाम का भी लकब है और दज्जाल का भी है। इससे इसके फितने से बचने के लिए दुआ करनी चाहिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, मसनून दुआओं में आप देख सकते हैं। और ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किया करते थे नमाज में सलाम फेरने से पहले, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। उनको तो क्या जरूरत थी ये दुआ करने की, उनको कौन सा खतरा था इससे, लेकिन उन्होंने अगर हमें सिखाई तो इसका मतलब ये है कि हम इसको कितना हमें मांगना चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इसके फितने से अपनी पनाह मिले। आप देखें अगर दुनिया में ऐसे हालात हो जाते हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूं कि एंड एंड ऑफ टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है, और इससे हमें सबको अवेयर होना चाहिए, हमें सबको समझना चाहिए कि हम दुनिया के आखिरी वक्त में हैं, दुनिया के खत्म होने के आखिरी वक्त में। अब वो चाहे 100 साल हो, 200 साल हो, 300 साल हो, लेकिन ये एंड ऑफ टाइम शुरू हो चुका है। ये सिर्फ मुसलमान नहीं कहते, ये सब कह रहे हैं जो इल्हामी मजाहिब वाले, ईसाई भी कह रहे हैं, यहूदी भी कह रहे हैं और मुसलमान भी कह रहे हैं। ऐसे वक्त में अगर हम बिल्कुल इन चीजों को छोड़ देते हैं और हमें समझ ही नहीं है इनकी, हमें पता ही नहीं है, तो हम तो लग जाएंगे ना पीछे। कोई कोई बच सकेगा जिसका ईमान बहुत मजबूत होगा, वरना ज्यादा लोग क्या कहेंगे। हम तो सूद जैसी चीज के आगे हार गए और हमने कहा अब क्या करें, मजबूरी है, हारे के नहीं हारे, क्या करें, मजबूरी है, दुनिया तो इसी पे चल रही है। तो मसीह दज्जाल आएगा तो क्या होगा, मजबूरी है, क्या करें, किधर जाएंगे हम, हम तो नहीं जाके पहाड़ों में कहीं रह सकते, हम तो नहीं वीरानों में जाके छुप सकते, हम तो लग्जरीज के आदी हैं, हम तो एसी ना चले तो रह नहीं सकते, हमें चाय ना मिले तो सर में दर्द हो जाए, हम तो गाड़ियों के और आरामदेह बिस्तरों के आदी हैं, हम रहेंगे जाके। तो ऐसे ही नहीं, इसको इतना बड़ा फितना कहा गया, ये ना समझे कि मामूली बात है। वो ही ईमान अपना बचा सकेगा जिसका ईमान इतना मजबूत होगा कि कोई आग में डाल दे तो डल जाऊंगी, लेकिन मैं इस पे ईमान नहीं लाऊंगी। और ये कहना बड़ा आसान है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन कोई वजह ही होगी ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम अलैहि सलाम से लेके कयामत तक नहीं कोई इतना बड़ा फितना होगा। हम छोटे छोटे फितनों को ही सोच के कहते हैं हाय कितने फितने आजकल, हम तो उनके सामने हार माने हुए हैं, हमें ये फितने बड़े लगते हैं, और वो क्या फितना होगा फिर, जब इंसान की रोजी रोटी को कोई अपने कब्जे में ले ले, वो क्या होगा, और अल्लाह के इज्जत से अल्लाह ने उसको फितना बनाया। तो ये बात करनी जरूरी थी, थोड़ी सी इससे हटके है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि सब इन चीजों के बारे में जरूर अपने इल्म लें, आपको समझ होनी चाहिए। तो उनका नाम मसीह ईसा बिन मरियम, ईसा हिब्रू का लफ्ज है, ईशु उससे अरबी में ईसा बना, मतलब सैयद, सरदार, पॉलिटिकल लीडर, आयद, तो ईसा इब्ने मरियम, मरियम के बेटे। मरियम के बेटे क्यों कहा? बाकी तो किसी पैगंबर के बारे में पुराने पाक में ये नहीं आया कि यूसुफ बिन याकूब, ये नहीं आया याकूब बिन इसहाक, तो इनका क्यों आया? इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये बताना था कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ मरियम के बेटे हैं, इनका बाप कोई नहीं, वरना हमेशा बाप का नाम आता है ना, यहाँ पे बाप है ही नहीं, तो मरियम अलैहिस्सलाम का नाम आया। और वजीहन, तो यहाँ पे तो सबकी रद्द हो गया ना, ईसाइयों का भी और यहूदियों का भी, जो कहते हैं वो वलद जिनात है नाउजुबिल्ला, उनका भी रद्द हो गया कि इनका बाप कोई नहीं है, किसी के बेटे नहीं है ये आदमी के। और ये भी रद्द हो गया कि जो लोग कहते हैं कि ये नाउजु बिल्ला खुदा का बेटा है, नहीं वो इब्ने मरियम है बस। वजीहन, वजाहत से, इज्जत वाला, बुलंदी वाला, वजी होगा फिर दुनिया, दुनिया में भी और आखरत में भी, यानी इतना इज्जत वाला होगा। आज भी देखें आप, अंदाजा कीजिए कि इतनी उनकी मुखालफत हुई थी, कि यहूदियों ने इतनी मुखालफत की थी कि सूली पे चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आज तक भी इनके नाम लेवा दुनिया में कितने मुसलमान भी और ईसाई भी हैं जो इनको मानते हैं। तो वो चेहरा जो इज्जत वाला चेहरा, वज चेहरे को कहते हैं ना, तकरीम वाला, तो वो कोई आम आदमी नहीं थे, बड़ी ऑनरेबल चेहरा था उनका। जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर कोई एक स्टैंड आउट करता है ना, अपनी सिर्फ अपनी फिजिकल ब्यूटी की वजह से नहीं, बस उसके में इतनी अट्रैक्शन होती है, तो उनको अल्लाह ताला ने ऑनर दिया है उनके नबूवत की वजह से भी। लोगों से बात की उन्होंने, जिस वक्त अभी पैदा हुई है, अभी आएगी बात, तो उनको अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई। अब देखें एक ऐसे बच्चे को जो बिन बाप के पैदा हो रहा है और लोग उसको अल्लाह ताला माफ करे वलदु जिना कह रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह ने उनको वजीह बनाया। यानी हजरत मरियम को उस वक्त खुशखबरी दी जा रही है कि आप फिक्र ना करें, वो वजी होगा दुनिया में भी और आखरत में भी, आखरत में भी अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद मकाम पाएंगे, आला दर्जे होंगे उनकी, इज्जतें होंगी उनकी। सुभान अल्लाह, तो दुनिया के कहने से नहीं कुछ होता, ये अल्लाह है जो इज्जतें देने वाला। हमने क्या पढ़ा था, अल्लाह ताला मालिक अल मुल्क है ना, अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्क, अल्लाह बादशाह है, बादशाहत उसके कब्जे में है। तो अइज्जु मन तशाउ तुज़िल्लु मन तशाउ पढ़ा है ना, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तो लोगों ने चाहा कि उनको ये कह के बदनाम किया जाए और उनको ये कह के सूली पे चढ़ाया जाए, उनके ऊपर अभी हम बात करेंगे कितने सारे इल्जामात लगाए गए, लेकिन अल्लाह ने उनको वजी बनाया। आज इज्जत करते हैं सब उनकी। वमिन अल मुकर्रबीन, और मुकर्रब बंदों में से, मुकर्रब कौन होता है, जिसको अल्लाह करीब कर ले। हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह उसको करीब कर ले, लेकिन कोई ऐसा है जिसको अल्लाह खुशखबरी पहले से दे देता है कि अल्लाह ने उनको करीब कर लिया, मुकर्रब बंदों में शामिल कर लिया, दुनिया में भी और आखरत में भी। दुनिया में करीब अल्लाह ताला का कुर्ब उनको नसीब हुआ, नबी थे, और आखरत में भी अल्लाह अपने से करीब करेगा। अच्छा, हमारी भी ख्वाहिश होती है, अब हम ये देखें नबूवत के दर्जात और ये दर्जात, तो ये तो चुने हुए लोग अल्लाह के होते हैं, वो तो नहीं बन सकते, लेकिन मुकर्रबीन आम लोग भी बन सकते हैं। कैसे बने मुकर्रब? क्या आपका दिल चाहता है अल्लाह से करीब हो? याद रखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आखरत में अल्लाह का कुर्ब मिले, दुनिया में अल्लाह से करीब होना पड़ेगा। और आखरत में अल्लाह के करीब जगह कौन सी है? जन्नतुल फिरदौस सबसे ज्यादा करीब है, जिसकी छत ही अल्लाह का अर्श है, और मैंने आपको बताया था अल्लाह ताला ने उसको अपने हाथों से बनाया, सजाया। तो जो चाहते हैं जन्नतुल फिरदौस पाना, अल्लाह का कुर्ब पाना, उनके लिए फिर क्या जरूरी है? दुनिया में अल्लाह के करीब हो, अल्लाह से दूर नहीं भागना, अल्लाह से करीब होना। अल्लाह से दूर भागेंगे इस दुनिया में तो आखिरत में क्या अल्लाह के करीब हो जाएंगे? नहीं, जैसे आप दुनिया में होंगे वैसे ही मकामात आखिरत में पाएंगे। तो दुनिया में अल्लाह से करीब होने का क्या तरीका है? पहला तरीका जो बुखारी में आता है वो तरीका ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो शख्स मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी में दुश्मनी करे मैं उसे लड़ाई का ऐलान सुनाता हूं। और अब ये सुनने की बात है, मेरी पसंदीदा चीजों में से किसी भी चीज के जरिए मेरा बंदा मुझसे इस कदर करीब नहीं होता जिस कदर उन चीजों को अदा करने से करीब होता है जो मैंने फर्ज की है। यानी आप जितनी चीजें निकाल लें, मैं आपको कोई बताती जो आप ये कर लें वो कर लें सदका कर लें फलां कर लें फलां कर लें, नहीं, हदीस में क्या आता है, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह से करीब करने की चीज फराइज अदा करना। ठीक है, तो सबसे पहले अपने फर्जों की तरफ तवज्जो दें, चाहे वो नमाज है, चाहे वो जकात है, चाहे वो रोजे हैं, चाहे वो और जो भी फराइज अल्लाह ताला ने हमारे पर रखे हैं। और मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यानी फर्ज के बाद क्या दर्जा आता है नवाफिल का। और हमारे पर फराइज आयद होते हैं बीवी के तौर पे, माँ के तौर पे, बेटी के तौर पे हमारे पर फराइज हैं जो अल्लाह ने आयद किए हैं, वो भी फराइज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फराइज अदा करें। फर्ज सिर्फ ये नहीं है कि फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम है ये बस फर्ज है, बहुत सारे फराइज हैं जो भी अल्लाह ताला ने हमारे हमें हुक्म दिए कुरान में, वो फराइज ही हैं। और फिर नवाफिल के जरिए मेरा बंदा मेरे करीब होता रहता है यहां तक कि वो मुझे महबूब हो जाता है। फिर उसके बाद नवाफिल की बारी आती फर्जों के बाद। ये नहीं कि नफलों को फर्जों की जगह पे रखते, आप तहज्जुदे इतनी पढ़े कि फजर भी ना अदा हो सके, फिर ऐसे नहीं। और फिर और भी नवाफिल, जहां पे जकात देनी है वहां पे सदके तो बहुत कर रहे हैं लेकिन जकात की फिक्र नहीं है, उम्रे तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हज किया ही नहीं। तो देखिए नवाफिल बाद में आते हैं, फर्ज पहले आता है। तो जब फर्ज अदा होता है उसके बाद नफल होते हैं तो फिर इंसान अल्लाह के करीब होता जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह और क्या चीज करीब करती है? अल्लाह ताला फरमाते हैं वसजुद वक्तरिब, सजदा करो और करीब हो जाओ, यानी सजूद अल्लाह के करीब करते हैं। और सजदे हम किस में करते हैं? नमाजों में, तो फर्ज नमाजों के अलावा नवाफिल। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरतुल वाकिया में फरमाया है, अगर आपको सूरह वाकिया याद हो, साबिकून के बारे में, साबिकून अल्लवलून है ना, वो क्या है जो साबिकून है? उलाइकल मुकर्रबून, वो मुकर्रब है, वो अल्लाह के करीब है। और साबिक कैसे बनते? साबिकून जो सबकत ले जाने वाले हैं, यानी बाकियों से आगे बढ़े नेकियों में। लोग जो नेकी को सोच रहे हो अभी, आप आगे बढ़ के वो कर ले, फर्स्ट वन बन जाए। साबिक होता है ना सबकत ले जाने वाला, जैसे हम कहेंगे क्लास में सबकत ले जाने वाले कौन से होते हैं, जो फर्स्ट आते हैं, जो पोजीशन लेते हैं, वो सबकत ले जाने वाले हो गए। तो नेकियों में भी सबकत होती है, सोच सोच के नेकियां नहीं करनी होती, सोच सोच के नहीं अल्लाह की फर्मा बरदारी करनी होती, भाग भाग के करनी होती है। कि इंसान वेट ना करे, इंसान मशवरे ना करे, जहां पे नेकी का मौका है भाग के कर ले। जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा नहीं था कि मैं ईमान लाऊं कि नहीं लाऊं, फौरन ईमान लिया। साबिकून, ठीक है, तो साबिकून बनने से भी इंसान अल्लाह से करीब हो जाता है। याद रखिए जब इंसान करीब होता है ना तो पता चल जाता है कि ये अल्लाह के करीब है। इंसान जो जिसका जिससे ताल्लुक होता है जाहिर है उसके साथ बैठ के पता चलता है कि ये किसके करीब है। तो कुर्ब की कोशिश करें ताकि आखिरत में भी कुर्ब मिले, वरना सिर्फ ये कह देना अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस दे दे ये इतना काफी नहीं है। वहां पे कुर्ब लेना है ना तो यहां पे करीब हो, और उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। वयुकल्लिमुन्नासा फिल महदी वकहला, और वो कलाम करेगा लोगों से, फिल महद
پنگوڑے میں وہ کہلا اور بڑی عمر میں وہ من الصالحین اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. اب دیکھیں کتنی خوشخبریاں مل رہی ہیں, کتنی باتیں آ کے بتائی جا رہی ہیں کہ ان کا نام یہ ہوگا, وہ وجی ہوں گے, وہ مقربین میں سے ہوں گے, اور وہ کلام کریں گے لوگوں سے پنگوڑے میں. پنگوڑے میں کلام کرنا کا مطلب کیا ہے کہ ایز اے نیو بورن انفینٹ ہوں گے, اور انفینٹ بچہ تو ویسے ہی کچھ بھی نہیں بول سکتا, جو نیو بورن ہوتا ہے وہ کہاں کچھ بول سکتا ہے, لیکن یہ اس وقت کلام کریں گے جس وقت کوئی بچہ ہوگا بھی نہیں کرتا, وہ بھی چند مہینے کا ہوتا ہے تو بولنے لگتا ہے. تو اس وقت یہ اپنی ماں کی برات کو ثابت کریں گے. اب یہ میں تھوڑی سی بات سورہ مریم سے آپ کو سنانا چاہتی ہوں, یہی واقعہ وہاں پہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے. تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ جو واقعہ آیا ہے حضرت مریم کا, تو اس میں آیا ہے کہ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرق کی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا, پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, بس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کے ظاہر ہوا. یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا. ڈر گئی, حیا والی تھی نا کہ یہ کون آدمی آ گیا تنہائی میں میرے پاس. تو اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. یہاں سے پتا چلا کہ بہت سارے فرشتے نہیں آئے تھے بلکہ جبرائیل علیہ السلام ہی آئے تھے جن کو ملائکہ کہا گیا. کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے تو کسی ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں. اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے, ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو, اور اپنی خاص رحمت, یہ تو ایک طے شدہ بات ہے, اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے, اب یہ ہو کے رہے گی. بس وہ حمل سے ہو گئی, اسی وقت حمل سے ہو گئی, اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی. پھر جب ان کو درد شروع ہوئے تو اسے کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا, بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی, یہ اس شرم کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ تھوڑی میری بات کا یقین کریں گے کہ نہیں یہ تو بن باپ کی ہے, یہ تو معجزہ ہے, وہ کہاں یقین کریں گے. اتنے میں اسے نیچے سے آواز آئی کہ افسردہ خاطر نہ ہو, تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا, یہ تیرے سامنے ترو تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا, چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ, اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے, میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی. یعنی اس زمانے میں ان کے ہاں چپ کا بھی ایک روزہ ہوتا تھا. تو کہنے لگی ان کو کہا گیا کہ اگر آپ سے اب آپ کو کوئی بچہ لے کے جائیے کوئی انسان نظر آئے تو کہیں کہ میں نے تو روزہ مانا ہوا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں, سب کہنے لگے مریم تو نے تو بڑی بری حرکت کی ہے, اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا نہ تیری ماں بدکار تھی, یعنی تم کوئی ایسے خاندان سے تھوڑی تھی کہ تم نے یہ حرکت کر دی. ظاہر ہے سب جانتے تھے کہ یہ تو ایک کنواری لڑکی ہے اور بڑی نیک پارسا ہے, تو تم کہاں سے, تمہارا خاندان اتنا شریف خاندان اور تم نے یہ کیا کی یہ حرکت. مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا, سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں, یعنی اب وہ بچہ پیدا کر کے لے کر آ رہی ہیں لوگوں میں نا, وہ دور چلی گئی نہیں تھی اور وہاں پہ بچہ پیدا ہوا اب لائی ہیں. بچہ بول اٹھا انی عبداللہ, سب سے پہلی بات جو پیدا ہوتے ہی اس بیبی نے کی وہ یہ کی انی عبداللہ. اگر آپ سوچیں یہ باتیں, یہ جو خود پیدا ہو کے کہنے والے میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا غلام ہوں, آج انہوں نے عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا کے رکھ دیا جنہوں نے پیدا ہوتے ہی یہ کلمات کہے, اور اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی, مجھے پیغمبر بنایا اور اس نے مجھے بابرکت کیا جہاں بھی میں ہوں, اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک بھی میں زندہ ہوں, اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا, اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے. جی ہاں, وہ اس دن پہ سلام ہے جس دن میری پیدائش, اور اس دن پہ سلام ہے جس دن میری موت کا دن, اور اس دن پہ سلام ہے جس دن میں کھڑا کیا جاؤں گا, سلامتی ہی سلامتی ہے.
तो ये सारी बातें की थी उन्होंने, ठीक है। और फिर है ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये है सही वाक्या ईसा बिन मरियम का, यही है हक बात जिसमें लोग शको शुबे में। तो कितनी डिटेल के साथ बता दिया गया कि ईसा अलैहि सलाम पैदा हुए, तो पैदा होते ही उन्होंने बिल्कुल क्लियर बात की, तीन बच्चे हैं सिर्फ इस दुनिया के अंदर गुजरे जिन्होंने पैदा होते ही कलाम किया, उनमें एक ईसा बिन मरियम। और कहूलत में कलाम करना, बड़ी उम्र में तो सारे ही कलाम करते हैं, तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। असल में कहूलत में कलाम करने से मतलब ये नहीं कि आम कलाम करना, इतनी इंप्रेसिव टॉक, इतनी जबरदस्त बात करना कि लोग यानी मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। देखिए हर कोई तो ऐसी बात नहीं, हर एक की बात नहीं कोई सुनता, हर एक की बात पूरा असर नहीं होती, इफेक्टिव नहीं होती, मगर ईसा अलैहि सलाम जब बात करते थे तो कहा जाता है कि जब छोटे लड़के ही थे ना, तो हैकल में जाके इन्होंने दर्स दिया, तो बड़े बड़े उलमा हैरान हो गए। उस वक्त भी उन्होंने उनकी इतना नॉलेज भी था और इतनी उनकी बात इंप्रेसिव थी, लेकिन यहाँ पे खास तौर पे कहा गया कहूलत में कलाम करेंगे, और कहूलत 30 से 50 ईयर्स की एज को कहा जाता है, तो जो बलूगत की बिल्कुल एज होती है, जिसमें ये भी कहा जाता है जिसमें थोड़ी थोड़ी सफेदी आने लगे बालों में। और ये ईसा अलैह सलाम जब तक जमीन पर थे उनकी ये एज नहीं आई, 30 ईयर्स पे तो उनको नबुवत ही मिली थी, और उसके बाद कुछ अरसे में ही उनको उठा लिया गया। तो ये कब वो कलाम करेंगे, इसका मतलब है वो दोबारा दुनिया में आएंगे और कलाम करेंगे, इसलिए कि कहा गया कि कहूलत में भी वो ऐसा कलाम करेंगे। वह मीना सालेहीन, और सालेहीन में से होंगे, नेक बंदों में से होंगे। बाकी दुनिया दुआएं करती है, अल्लाह हमें साले औलाद अता फरमा, और हजरत मरियम को अल्लाह ताला खुद खुशखबरी दे रहे हैं कि वो साले होंगे। और साले वो होता है जिसका जाहिर और बातिन अच्छा हो, जैसे हम कहते हैं इसलाह करना, इसलाह भी इसी से है, यानी हर एरिया में जिंदगी के, जाहिर है, बातिन है, तन्हाई है या लोगों में है, दिल में है या अमल में है, प्राइवेट जिंदगी में है, पब्लिक जिंदगी में है, हकुकुल्ला में है या हकुकुलिबाद में है, हर एक जगह पे वो साले हो, हर एरिया में साले हो। जैसे हम तो ये होता है ना कि हम एक जगह पे अच्छे होने लगते हैं तो दूसरी जगह हमारी खराब हो जाती है, वहां पे कोई मसला हो जाता है, दूसरी जगह में कुछ सही करने लगते हैं तो कहीं और कोई मसला हो जाता है, क्योंकि हम सारे ऑर्डनरी पीपल हैं। लेकिन वो अल्लाह ताला के ऐसे चुने हुए थे कि जिसको कहते हैं ना ऑलराउंडर, कि हर हर फेज ऑफ लाइफ में जबरदस्त, सुभान अल्लाह। तो वो मीना सालेहीन होंगे, तो कितनी खुशखबरियां हो गई, 6 खुशखबरियां अल्लाह ताला ने दे दी हजरत मरियम को कि कैसा बच्चा अल्लाह ताला आपको दे रहा है, वजी भी होगा और दुनिया और आखरत में वजी होगा, मुकर्रब होगा, कलाम करेगा ऐसे कि जैसे कभी किसी ने ना कलाम किया, और माँ की गोद में कौन कलाम कर सकता है। और फिर जवानी में, बड़ी जवानी में आके, बड़ी उम्र में आके, कहूलत में आके इतनी ऐसी बातें करेगा कि जो लोगों को इंप्रेस कर दे, और वो सालेहीन में से होंगे।